नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर होंगे जनसुराज के उम्मीदवार। उपचुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से आज पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल और भोजपुर समेत कई जिलों में हुई बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रूपये की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीवीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई 1 किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके।
मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
श्री चौहान ने कहा कि वीवीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अधिसूचना कल जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। मतदान 30 जुलाई को होगा। वहीं मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जनसुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने श्री किशोर के नाम का ऐलान किया है। पार्टी उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद प्रशांत किशोर ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेवारी तय की है उसका सम्मान करते हैं।
बांकीपुर में चुनाव लड़ने की जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, मैं उसी परिणाम, उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूं। जो नवंबर 2025 में हजारों लाखों लोग जनसुराज के विचार से, इस प्रयास से जुड़े थे, तो मैं इस जिम्मेवारी को अपनी ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करता हूं। अपने साथ सभी साथी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का धन्यवाद करता हूं।
इधर भाजपा ने भी बांकीपुर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के चयन को लेकर कोर कमेटी की बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत पार्टी के प्रमुख नेता मौजूद थे। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट पेश किए जाएंगे। अगले कार्य दिवस में इस पर सामान्य वाद विवाद होगा और मतदान के बाद मंजूरी दी जाएगी। इधर संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। एक रिपोर्ट।
इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आज 80वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान ने समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोजपा आर प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लखनऊ में आयोजित जयंती समारोह में कहा कि रामविलास पासवान समाज के वंचित और दलित वर्गों के हिमायती थे और सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पासवान की भावनाओं के अनुरूप पार्टी का विस्तार किया जा रहा है।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया कि हमारी पार्टी के संस्थापक मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस समारोह को इस साल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसको मनाने का फैसला पार्टी के द्वारा लिया गया। आने वाले दिनों में पार्टी विस्तार की सोच से आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की सोच रखती है। गठबंधन क्या होगा, गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा, कितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये तमाम फैसले राज्य इकाई को लेने हैं।
इधर पटना समेत प्रदेश भर में रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की एक अदालत ने सुनवाई करते हुए विधायक को इस मामले में दोषी करार देते हुए पीड़ित परिवार को 25 लाख रूपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित राजू कुमार सिंह के भाई के फार्म हाउस में पार्टी के दौरान हॉर्स फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने संदेश में कहा है कि पार्टी की स्थापना गरीबों शोषितों और अकलियतों के अधिकारों की लड़ाई के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने पार्टी की एकजुटता पर बल देते हुए कार्यकर्ताओं से जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करने की अपील की है। श्री यादव ने इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के संघर्ष और समर्पण की सराहना की। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के दोइया में शांति मनी पेपर मिल के विस्तारीकरण परियोजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पेपर मिल परिसर का भ्रमण कर उत्पादन प्रक्रिया और अत्याधुनिक मशीनों का निरीक्षण भी किया। बिहार राजपथ परिवहन निगम द्वारा पटना औरंगाबाद मुजफ्फरपुर गया जी और जमुई समेत प्रदेश के 30 से अधिक प्रमुख शहरों में आधुनिक बस डिपो का निर्माण किया जाएगा। परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने बताया कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिपो में वातानुकूलित प्रतीक्षालय, कैफेटेरिया, शॉपिंग क्षेत्र, होटल और अन्य यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने से आज पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल और भोजपुर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण के बगहा में सबसे अधिक 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार कल औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
दिनांक 6 जुलाई राज्य के औरंगाबाद, भभुआ एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अरवल, औरंगाबाद, बांका, भभुआ, गया, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास एवं शेखपुरा जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, मुंगेर एवं पटना जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
इधर बारिश होने से अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन भाई का आज निधन हो गया। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में तीजन बाई के योगदान को देश श्रद्धापूर्वक याद रखेगा। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में श्री चौधरी ने कहा कि उनके निधन से भारतीय लोक कला और संस्कृति को अपूर्णीय क्षति हुई है। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया मंझोलिया रेलखंड के दोहरीकरण कार्य का कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS गुरुप्रकाश ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रैक, सिग्नल प्रणाली, इंटरलॉकिंग व्यवस्था और रेलवे क्रॉसिंग समेत अन्य कार्यों का जायजा लिया। इस क्रम में CRS ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड ट्रायल भी किया। भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत राही लाइन होटल के पास चार पहिया वाहन ने एक खरे कंटेनर में टक्कर मार दी, जिससे वाहन सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने बलिराजगढ़ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संचालित खनन कार्य की प्रगति की समीक्षा की। जहानाबाद जिले में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन अभियान के तहत टीबी मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी छीरिंग वाई भूटिया ने कहा कि सरकार जिले को क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर होंगे जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार। उपचुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से आज पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल और भोजपुर समेत कई जिलों में हुई बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।